Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Vishnupad Paramhans Pavajikacharya Ashtotra Ashtashishimad His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki His Confounder Acharya Jagat Guru Sivada Whole World is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupad Paramhans Prabhuji Gacharya Shtotra Shtoshi Shishimad. His Divine English La Bhakti Siddhant Sarasvati Thakur Maharaj Prabhupad ki Anand Koti Vaishnavrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivind ki Shri Shri Radha Radhika Ramanji ki Shri Shri Krishna Balaram ki Jagannath Baldev Subhadra Sudarshan ji ki Shri Shri Gaunitai ki Vrinda Devi Tulsi Maharani ki Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada Transcendental Bhagavad Gita Marathon ki Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Grantha Srimad Bhagavatam Dasham Skand Adhyaya Sankhya 5 Adhyaya ka naam hai Nand Maharaj Tatha Vasudev ki Bhent Shlok Sankhya 27 aur 28 श्लोक संख्या 28 बोर्ड पे है इसका उच्चारण करेंगे पुंसा त्रिवर गोविहिता सुहृदो हि अनुभाविता नातेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते Ponsa Sri Vargo Vihita Suhridohi Anubhavita Nateshu Klishyamaneshu Tri Vargo Arthaya Kalpate Ponsa Sri Vargo Vihita Suhridohi Anubhavita Nateshu Klishyamaneshu Trivargo Arthaya Kalpate
Teshu Krishna Maneshu
धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति मैदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पुंसः मनुष्य का त्रिवर्गः जीवन के तीन उद्देश्य धर्म अर्थ और काम विहितः वैदिक संस्कारों के अनुसार आदिष्ट सुहृदा संबंधियों तथा मित्रों के प्रति ही निसंदेह अनुभावितः सही मार्ग में होने पर ना नहीं तेषु उनमें क्लिश्यमानेषु क्लेश में पड़े हुए त्रिवर्गः जीवन के तीन उद्देश्य अर्थाय किसी प्रयोजन के लिए कल्पते ऐसा हो जाता है जब किसी के मित्र तथा संबंधी गण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लेखित उनके धर्म अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेश ग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। तात्पर्य वसुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं अतएव वे दुखी हैं। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो नंद और नंद महाराज और वसुदेव की भेंट, ये दशवें स्कंद का पांचवें अध्याय का नाम है। और इस अध्याय में देखते हैं हम शुरुआत में कि वसुदेव जी भगवान के कहने पर जब कृष्ण प्रकट होते हैं कंस के कारागार में, तो कृष्ण को ले जाते हैं गोकुल में नंद महाराज के यहाँ छोड़ते हैं, योग माया के प्रभाव से सभी जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, उनकी बेड़ियाँ भी खुल जाती हैं, और वहाँ से यशोदा जी ने जो जिस पुत्री को जन्म दिया उसको वो लोग क्या आते हैं, और वापस जेल में फिर योग माया के प्रभाव से सब स्थिति वैसे हो जाती है। और जब ये बात अगले दिन सुबह पूरे ब्रज में मालूम चलती है कि नंद और यशोदा के यहाँ बहुत ही बड़े अंतराल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो सब बहुत खुशियाँ मनाते हैं। सभी ब्रजवासी, सभी गोपियाँ, गोपगण सुंदर सुंदर वस्त्र डाल के, सुंदर सुंदर उपहार लेके नंद महाराज यशोदा के घर में आते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संगीत वाद्य आदि बजते हैं, खूब पूरा उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव को मनाने के बाद नंद महाराज जी सारे ग्वाल बालों को लेकर मथुरा में आते हैं कंस को कर जमा कराने के लिए। और जब कंस को कर जमा करा देते हैं तो वसुदेव को मालूम चलता है कि नंद महाराज यहाँ आए हुए हैं, तो फिर वसुदेव नंद महाराज को मिलने जाते हैं। और जब मिलते हैं तो ये दोनों वापस वास्तव में सौतेले भाई कह सकते हैं, एक ही पिता के दो पुत्र हैं। और नंद महाराज की उत्पत्ति हुई थी वैश्य पत्नी से और वसुदेव जी आए थे क्षत्रिय पत्नी से। तो उसके बाद जब मिलते हैं तो अब वसुदेव के हृदय में ये बातें चल रही हैं कि मैंने अपना जो बेटा था इनके सौंप दिया था और उनकी पुत्री को मैं ले आया था, तो जानना चाह रहे थे इनको ये बात मालूम है कि नहीं है, तो बड़े ही इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे थे सब ठीक तो है व्रज में, और पशु ठीक हैं, गायें ठीक हैं, सब वर्षा हो रही है, सब पता करके। फिर 27वें श्लोक में पूछते हैं, भ्रात्र मम सुता कच्चिन मात्रा सह भगवत व्रजे तातम भवंतम मन वानो भवद्भ्या मुप पाल पलालिता, आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता तो है ना, वह आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक रह रहा है ना। तो नंद महाराज केवल ये जानते थे कि वसुदेव का एक पुत्र मेरे पास है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि दोनों पुत्र उनके पास हैं। तो इसलिए जिस जो मालूम था वो उसके बारे में पूछ रहे हैं, बलराम जी कैसे हैं, आपके पास ही हैं तो आपको अपना माता पिता मानते हैं कि नहीं मानते, और रोहिणी भी ठीक है कि नहीं, ये तो प्रत्यक्ष था इसे पूछ लिया। और फिर आप बता रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी पत्नी आपके पास हैं, तो पुंसास्ते वर्गो विहिता सुहृदो ही अनुभाविता नातेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते, अब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा आपके पास है और मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, तो मेरे धर्म अर्थ काम का क्या लाभ, ये त्रिवर्ग विहिता जो मेरे सुहृद को मैं उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या फायदा है, ये तो बेकार है, जो मेरा धर्म है, जो मेरे पास अर्थ है, मेरी पोजीशन है, इसका क्या लाभ, अपने पत्नी और बच्चों को मैं सुख नहीं दे पा रहा, वो बेचारे आपके घर में बैठे हैं, तो बड़ा दुख की बात है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वसुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी और संतान होने पर भी वो अपने पालन करने का कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति भागवतम के इस कंध को, इस श्लोक को पढ़ेगा तो बड़ी बड़ी संसारी बात लिखी हुई है, एक व्यक्ति है उसके पास उसके पत्नी और बच्चे नहीं रह रहे तो दुखी हो रहा है बेचारा, खेद प्रकट कर रहा है, तो बड़ी अच्छा है, ये तो भागवतम अमल पुराण है तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए संसार में, ठीक बात है, जो भी हमने धन कमाया है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, किसके लिए, अपने पत्नी और बच्चों के सुख के लिए तो है, तो ये भागवतम यही लिखा है, तो आप लोग क्यों भागवतम पढ़ के उल्टे सीधे वैराग्य की बातें करते हो, तो हमें देखना चाहिए किस संदर्भ में बात हो रही है। जैसे एक युवा पूरे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनके पिता ने पूछा कौन से शास्त्र में लिखा है घर छोड़ के से ब्रह्मचारी बन जाओ, तो बोला अमल पुराण भागवतम, लाओ भागवतम पढ़ता हूँ मैं, तो उन्होंने पूरा भागवतम पढ़ा और पढ़ के बोला मैं तेरे को बताता हूँ कहीं नहीं लिखा ब्रह्मचारी बनना चाहिए, सब जगह ग्रस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो उन्होंने कौन सा श्लोक चुना, जैसे भागवतम के तीसरे स्कंद में माता दिती कश्यप को प्रेरित करती है कि गलत समय में उनका संग करें, और कश्यप मुनि जी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी दिति माता कह रही नहीं अभी मेरे साथ संग करो, और फिर बाद में कश्यप जी उसको फिर ओबलाइज करते हैं, और फिर कश्यप जी उसका गुणगान कर रहे हैं, और कश्यप जी कह रहे हैं एक स्त्री का संग ही है जिसके संग से भव सागर कोई पार कर सकता है। बोले ये श्लोक देखो लिखा है स्त्री के संग से ही भव सागर कोई पार कर सकता है, और तुम ऐसे कह रहे हो, वो नहीं पढ़ा कि चार कुमार छोड़ के चले गए वो सब नहीं, ये पढ़ा। तो हमें देखना चाहिए कि श्लोक कौन बोल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बोला जा रहा है। तो हालांकि वसुदेव खेद प्रकट कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि हाय मेरे बच्चे, मेरे पत्नी मेरे साथ में नहीं है, मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो शोक है, ये जो खेद है, ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य है। क्योंकि इसके लिए खेद कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम के लिए कर रहे हैं, स्वयं भगवान है उनके लिए खेद कर रहे हैं। तो ये शोक साधारण नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो ये समझना चाहिए, आचार्यों के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में भी इमोशंस होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी शोक होता है, भय होता है, खेद होता है, और वो कैसे हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, और उसी तरह से भौतिक जीवन के शोक कितने हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में शोक के ऊपर बहुत अच्छा वर्णन आता है। कहते हैं, शोको नश्यति धैर्यम, शोक नश्यति श्रुतम, शोको नश्यति सर्वम, नास्ति शोक समारिपु। जो शोक है वो हमारे धैर्य को समाप्त कर देता है। हम शोक करते रहे, हाय वो बिजनेस डील मैंने क्यों नहीं साइन की, वो क्यों नहीं किया, है ना, हाय उस लड़की से मैंने विवाह क्यों नहीं कर लिया, उसको गलती जगह मैंने हाँ क्यों भर दी, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो शोक से हमारा धैर्य समाप्त होता है, जो कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया है सुनकर पढ़कर सब खत्म हो जाता है। शोक नश्यति सर्व, सब कुछ नाश कर देती है। शोक के समान व्यक्ति या कोई शत्रु नहीं है, नास्ति शोक समारिपु, सबसे बड़ा शत्रु है शोक। आजकल कर शोक कर करके लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी मति खो बैठते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, हमेशा शोक में ही रहेंगे। और डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है पूरे समाज में, आप देखेंगे आगे भविष्यवाणी है कि 2020 तक पूरे विश्व में जो डिप्रेशन है वो किलर डिजीज होगा, सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन से मरेंगे, कैंसर से नहीं, हार्ट फेलियर से नहीं, छोटी बात में लोग शोक में चले जाते हैं, मानसिक रूप से इतने कमजोर है। तो नास्ति शोक समारिपो, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। लेकिन यहां देख रहे हैं हम, भागवतों में भी देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त शोक कर रहे हैं, है ना, युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं, देवहूति माता शोक कर रही है, यहाँ पे वसुदेव भी शोक कर रहे हैं। तो वसुदेव क्यों शोक कर रहे हैं, कि वो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सिंगौन निताई की जय। तो वसुदेव पछता रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा। और ये भक्त का बहुत अच्छा भाव है। हालांकि भगवान ने अपनी दिव्यता दिखा दी, जब भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए, षड ऐश्वर्य पूर्ण प्रकट हुए, चार भुजाओं के साथ प्रकट हुए, स्पष्ट था कि साक्षात विष्णु है, साक्षात भगवान है। और फिर भगवान ने ही आदेश दिया, मुझे ले जाओ गोकुल में। और फिर देखा उनकी योग माया के चमत्कार, कैसे सब दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, कैसे यमुना का पानी इतना बड़ा हुआ था फिर भी वसुदेव चलकर चले गए। तो सारा प्रभाव भी देखा और जानते थे बच्चा साधारण नहीं है, इस बच्चे को मेरी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वात्सल्य रस से प्रेरित होकर, वात्सल्य भाव में है वो देख रहे हैं कि हालांकि ये भगवान है फिर भी मेरी संतान है और मेरा कर्तव्य है, मुझे इसकी सेवा करनी है। तो वो खेद कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला में बताते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, कि वात्सल्य भाव में क्या होता है, भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझता है कि इसको मेरी सहायता की आवश्यकता है। जब भगवान 5 वर्ष के हुए और भगवान ने कहा मैं गायें चराने चाहता हूं, तो यशोदा माई को बड़ी चिंता हो गई, छोटा सा बालक है कैसे गायें चराने जाएगा जंगल में, इतना तो कमजोर है, बार बार इसको खिलाना पड़ता है, गायें चराने जाएगा, इतना बहुत चिंतित थे। फिर नंद बारा ने समझाया, नहीं नहीं इसको जाने दो, बड़ा हो गया बेटा, तो फिर जाने दिया, बड़े हृदय पे पत्थर रख के भेजा उसको। तो इसी ढंग से नंद महाराज भी सोचते थे, नंद महाराज कृष्ण को आज्ञा देते थे, चलो मेरे जूते लेके आओ, पादुकाएं लेके आओ, और कृष्ण बड़ी कठिनाई से पादुकाओं को रख रहे हैं सर पर लेके आ रहे हैं। तो वात्सल्य भाव में भक्त अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में थे तो उनकी भेंट एक वैष्णव कवि से होती है जिनका नाम रघुपति उपाध्याय था। तो रघुपति उपाध्याय ने बहुत सुंदर एक श्लोक की रचना करके चैतन्य महाप्रभु को सुनाई। श्लोक ऐसा था, श्रुतिं परे स्मृति मित्रे भारत मन्ने भजन्तु भवभीता अहम इहि नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परम ब्रह्म। रघुपति उपाध्याय ने सुनाया चैतन्य महाप्रभु को, इस भौतिक अस्तित्व में भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, कुछ स्मृति की पूजा करते हैं जो वैदिक साहित्य के उप सिद्धांत हैं, तो कुछ महाभारत की, किंतु मैं तो कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूं जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक, ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में बोले, किसी की मैं पूजा नहीं करता, ना स्मृति की, ना श्रुति की, ना महाभारत की, मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूँ जहाँ परम सत्य भगवान खेल रहे हैं उनके आंगन में। तो कितनी बड़ी बात है। तो वसुदेव यही सोच रहे हैं कि मैं अपने छोटे बालक की सेवा नहीं कर पा रहा, और नंद और महाराज यशोदा यहाँ के यहाँ सेवा हो रही है, मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए वो खेद प्रकट कर रहे हैं। तो भौतिक खेद, भौतिक शौक और आध्यात्मिक शौक में अंतर है। हम देखते हैं दुर्योधन भगवद गीता के पहले अध्याय में बहुत शोक कर रहे हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन को भीष्म पितामह ने बता दिया कि मैं सभी सेनाओं को मार दूंगा पांडवों की, पांडवों को छोड़ के। क्या बात है, पांडवों को छोड़ के सबको मार दोगे? द्रोणाचार्य ने बोला, मैं सबका वध कर दूंगा लेकिन पांडवों का वध नहीं करूंगा। तो बड़े चिंतित थे, बड़े शोक में थे, क्या है दोनों के दोनों जो हमारे महायोद्धा ऐसा वचन दे रहे। और साथ में वो जानते थे कि द्रोणाचार्य ने ही द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न को प्रशिक्षण दिया, और मालूम है कि यही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। तो सारे उसको फैक्टर्स मालूम थे, बड़े शोक की अवस्था में था। लेकिन शोक की अवस्था में आने के बाद हम करते क्या हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, ये मालूम करना पड़ेगा। अब दुर्योधन ने इतने शोक की अवस्था में आने के बाद भी भगवान की शरण नहीं ली, इसलिए उसके साथ सब अशुभ हुआ। और अर्जुन भी शोक में था कि मैं कैसे द्रोणाचार्य का वध करूं, भीष्म पितामह का वध करूं, बहुत शोक की अवस्था में था। तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण अकुलिक्षा नाम विषिदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन। विषिदंतम पहले अध्याय का नाम है, अर्जुन विषाद योग नाम, विषाद कर रहा है, शोक कर रहा है कि मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूं। लेकिन उस शोक की अवस्था में उसने क्या किया, कृष्ण की शरण ली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश्चेयस्यात् शेतम मोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। शिष्य बने, कृष्ण को गुरु माना, तो क्या हुआ, एंड रिजल्ट बड़ा शुभ हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद उच्चते। तो शोक की अवस्था में करते क्या है, शोक आना नेचुरल है, भौतिक जगत की संरचना ही ऐसे की गई है। लेकिन हमने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, अपना कुछ जुगाड़ किया। उसने राजनीति रची, उसने जाके द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को मोटिवेट करने का प्रयास किया, देखो आप कितने महान योद्धा हो, आपको लड़ाई करनी है। उसको मालूम था इन्होंने पांडवों को नहीं मारना, फिर भी उसने भगवान की शरण नहीं ले। इसी ढंग से देखते हैं हिरण्यकश्यप, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की पत्नी को समझा रहे, बड़ा बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान, पूरी भगवद्गीता का ज्ञान दे दिया, लेकिन कृष्ण की शरण नहीं ली। ये ज्ञान दिया बाद में, उसका उद्देश्य क्या था, कृष्ण को मारने का, विष्णु को मारने का। तो क्या हुआ, अशुभ परिणाम हुआ। ये भक्त लोग कभी शोक में जाते हैं तो किसकी शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है, बहुत शुभ होता है। अर्जुन को क्या परिणाम मिला, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, कृष्ण का संग मिला। इसी ढंग से युधिष्ठिर महाराज भी युद्ध के बाद शोक में चले गए, मेरे कारण, मैं कितना लालची हूं, कितना छोटा हृदय है मेरा, है ना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतने लोगों की हत्या की। तो शोक में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, और फिर किसकी शरण ली उन्होंने, भगवान के भक्त भीष्म पितामह की, उनको धर्म का ज्ञान हुआ, है ना। इसी ढंग से हम देखते हैं माता देवहूति भागवतम के तीसरे स्कंद में। माता देवहूति स्वयं मनु की पुत्री, बहुत सुंदर, एक पूरे ब्रह्मांड के जो राजा है स्वामी उनकी पुत्री, और उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि से जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, और कर्दम मुनि ने उनके साथ विवाह करके अपनी तपस्या जारी रखी, और माता देवहूति ने उनकी ऐसी सेवा की एक दासी के रूप में, सेवा करते करते बताते हैं भागवत में बिल्कुल दुबली पतली हो गई, सारी उनके शरीर की कांति खत्म हो गई। और जब कर्दम मुनि उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए तो कर्दम मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने जो तपस्या की है, जो मुझे आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हुए हैं, जो मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है, मैं सबका सब तुम्हें देता हूं, तुमने मेरी इतनी सेवा की। कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। तो देवती माता ने बोला, बहुत अच्छी बात है आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन आपने मुझे ये भी वचन दिया था कि आप संतान उत्पन्न करेंगे, आप मुझे कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। बोले ठीक है चलो। और फिर कर्दम मुनि ने सारी व्यवस्था की, बहुत सुंदर अंतरिक्ष में उसको ले गए, मेरु पर्वत के ऊपर तरह तरह के स्वर्ग के लोकों में घुमाया, खूब घुमाया, और सैकड़ों वर्षों तक उनके साथ भोग किया। उनको 9 पुत्रियां वर दी उनकी, और फिर बोले ठीक है अब 9 संतानें मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ वानप्रस्थ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। तब देहोती माता शोक करती है कि हाय मैंने क्या कर दिया, आप जैसे उन्नत पति व्यक्ति मेरे पति बने और मैंने आपका केवल इंद्र तृप्ति के लिए संग किया, आपसे मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाई, जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान था वो प्रेम था प्राप्त नहीं कर पाई, अब मुझे वो चाहिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझे अभय प्राप्त हो जाए। तो फिर कर्दम मुनि ने कहा ठीक है अब आपको ऐसा पुत्र मिलेगा जो आपको सही ज्ञान देगा। तो भगवान कपिल फिर प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन में भी हमें उन्नत भक्तों का संग मिलता है, प्रमाणिक गुरु का संग मिलता है, और प्रमाणिक गुरु के संग में हमें कुछ ऐश्वर्य भी मिल जाते हैं, पावर मिल जाती है, पोस्ट मिल जाती है, पोजीशन मिल जाती है। तो हम एक कई बार आध्यात्मिक गुरु को एक अधिकारी के रूप में ही देखते हैं, या उन्नत भक्तों को भी अधिकारी के रूप में ही देखते हैं, है ना, अथॉरिटी के रूप में बस। तो संग जो उनका असली लाभ है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो जब शिष्य को ये पश्चाताप होता है छी क्या कर दिया मैंने, गुरु की शरण कुछ पावर पोस्ट पोजीशन के लिए नहीं है, गुरु की शरण है कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, ये जानने के लिए संसार में सब व्यर्थ है, केवल कृष्ण प्रेम ही चाहिए। जब ये भावना शिष्य के अंदर ये पश्चाताप ये भावना होती है तो फिर उसको गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जब तक वो गुरु और उन्नत भक्तों को एक मिक्स देखता रहेगा, ठीक है आध्यात्मिक तो है लेकिन इनसे मुझे ये भौतिक लाभ मिल जाए, ये मैनेजर पोजीशन मिल जाए, तो हम संघ का पूरा लाभ नहीं उठाते। तो वो शोक की अवस्था आनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं भक्तों का संग कर रहा हूँ केवल अपने भौतिक लाभ के लिए। तो देवी माता को ये शोक हुआ और इस शोक में उन्होंने शरण ली अपने पति की, गुरु की, और फिर उनको भगवान कपिल प्राप्त हुए और जिन्होंने उनको पूरा दिव्य ज्ञान दिया। बाद में भगवान कपिल भी घर छोड़ के चले जाते हैं, कर्दम मुनि भी घर छोड़ के चले गए, भगवान कपिल भी घर छोड़कर चले गए। और जाते जाते भगवान कपिल ने कहा कि जो मैंने तुम्हें आदेश दिए हैं भक्ति योग केवल उसका पालन करो, इसमें इस कुटिया में रहते हुए भी तुम ऐसे रहोगे कि जैसे पूरे आप भगवान के धाम में रह रहे हो। तो इस प्रकार से देवोती माता ने अकेले फिर भक्ति योग का पालन किया और अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त की। तो माता देवोती का शोक हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो भक्तों का जीवन, विशेषकर हम जो साधक हैं उनका जीवन, हमारा अस्तित्व 2 स्तर पे है। हम पूर्ण रूप से भौतिक जगत से मुक्त भी नहीं हुए और आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति करना चाहते हैं। तो भौतिक जगत में भी कुछ उथल पुथल होती है तो भक्त लोग परेशान होते हैं कि नहीं है? नहीं होते, होते घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहू आई नहीं, नहीं बड़े चाव से हमने विवाह किया, कुछ ठीक नहीं बनी, कितना दुख होता है। देख सकते हैं भक्तों को भी कई बार शोक में जाके, कई बार भक्त भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा हो गया, हो जाता है, निकल नहीं पाते। ये कहना भी हम इतने दिव्य स्तर पे नहीं है, उतरी उपार चढ़ाव होते ही रहेंगे संसार में और हम भी शोक में चले जाते हैं। कई बार भक्तों को आध्यात्मिक शोक भी होता है, जी मैं सुबह नहीं जल्दी उठ पा रहा, इतने दिन हो गए रीडिंग नहीं की मैंने, भक्तों की सेवा की भावना ही नहीं है, ये शोक भी आता है कि नहीं आता, है ना, सेवा की सही भावना नहीं होती, बीच में गंदी गंदी भावनाएं आ जाती है, अच्छी भावना से करनी है सेवा, ये शोक भी होता है। तो जब हमें शोक होता है तो हमारे पास, हमने देखा ऑब्जर्व किया मुख्यतः भक्त लोग के पास 3 तरीके अपनाते हैं। एक जो शोक होता है तो अपने इंतजाम करना, अपना ही जुगाड़ करना, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, कुछ ना तिकड़ा माजी करके कुछ कर लेना, जैसे हिरण्यकश्यप दुर्योधन, ये आसुरी प्रवृत्ति है, कुछ कर लूंगा मैं, अपनी बाजुओं पे पूरा विश्वास, अपनी स्किल्स पे विश्वास होना, ये आसुरी। दूसरा पूरा तमोगुण में ही चले जाना, सुबह जल्दी नहीं उठता, बड़ा परेशान हूं, जब ठीक नहीं करता फिर रजाई डाल के चुपचाप सो गए, फिर सुबह नहीं उठे कोई बात तो हम सुस्त होके पड़ गए नीचे, वो भी एक शोक है लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट करने का प्रयास नहीं है, फिर सो गए दोबारा से, परेशान ही रहे। और तीसरा क्या है कि हमने भगवान की शरण ली, हरि नाम की शरण ली। तो जब हरि नाम की शरण लेते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, भक्तों की शरण लेते हैं, तो हमारे जो मटेरियल इमोशंस भी हैं, मटेरियल भौतिक जगत की उथल पुथल भी है, उसको हम एक आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल कर सकते हैं, है ना। घर में कुछ समस्या है, बिजनेस में कुछ समस्या है, मन बहुत विचलित है, तो हम रो रो कर भगवान को पुकारें कि जैसे मर्जी परिस्थिति हो, मेरा मन बस मेरा आपके चरणों में ही लगा रहे। इसी श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, दिस चैंटिंग जपा इज लाइक अ कॉल, स्पिरिचुअल कॉल, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, है ना। जेन्युइन क्राई करके भगवान को पुकारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा। तो हम देखेंगे जो हमारी भौतिक समस्या भी है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शरण ले रहे हैं और डेस्परेट होकर हरि नाम ले रहे हैं, तो बहुत अनुकूल हो जाएगी, स्पिरिचुअल इमोशंस हो जाएंगे। भगवान के साथ संबंध हमारा हमेशा नित्य है, सनातन संबंध है। हम भूले हुए हैं, कृष्ण नहीं भूले हुए। कृष्ण की तरफ से स्विच ऑन है, हमारी तरफ से स्विच ऑफ है। तो ये परिस्थितियां हैं, श्रील भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, पूरा भौतिक अस्तित्व में जो कुछ भी घटता है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हर परिस्थिति एक सुंदर अवसर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हर परिस्थिति हमें शुद्ध करने के लिए, हमें भक्ति में आगे पुश करने के लिए है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना ही इसलिए की कि हम भगवत धाम वापिस आ सके। तो इसलिए हर इमोशंस को जो भौतिक जगत में पूरा उतार चढ़ाव रहता ही रहता है, तो क्यों ना हम इसको एक स्पिरिचुअल इमोशंस में बदल दें, भगवान के प्रति अपनी लालसा को और बढ़ाएं, भगवान को पाने की, भगवान को सेवा करने की उत्कृष्टता को और बढ़ाएं। कैसे? इसको स्पिरिचुअल इमोशंस में बदल के, तो हम देखेंगे भक्ति बहुत उन्नति करेंगे। पूरा का पूरा भौतिक जगत हमें लगे हमारे साथ कॉपरेट कर रहा है, अगर ये नहीं करेंगे सब लगेगा कोई मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, हर कोई इतना हॉस्टाइल क्यों है, है ना। इस केवल एक मानसिक स्थिति को चेंज करने से, तो जैसे कि ध्रुव महाराज का इतना अपमान हुआ, क्षत्रिय बालक, उनके पिता ने कहा तुम नहीं बैठ सकते, और सॉरी उनकी माता सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हारा ये सपना है कि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो ये जीवन तो संभव ही नहीं है। शरीर त्यागो, भगवान की शरण लो, मेरे गर्भ में आओ, मेरी संतान बनो, तब तुम्हें यह अवसर मिलेगा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। बहुत अपमान हुआ, सुनीति के पास गए, सुनीति ने बोला क्या कह सकती हूँ, आपके पिता मुझे दासी भी नहीं मानते, लेकिन सबसे पहली बात किसी से द्वेष मत करना और किसी पे आरोप मत लगाना, और नंबर टू माता सुरुचि ने बहुत अच्छी बात बोली है, क्या? भगवान की शरण लो, बस जाओ भगवान की शरण लो, वही कुछ कर सकते। तो जो ध्रुव थे बहुत ही बदला लेना चाहते थे और बहुत भौतिक इच्छा थी कि ऐसा राज्य चाहिए ब्रह्मा जी से भी ऊपर का राज्य, और फिर नारद मुनि की कृपा से उन्होंने तपस्या की और 6 महीने में ही भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बड़ा पश्चाताप करने लगे, फिर शोक में चले गए, छी क्या मांग लिया मैंने। भगवान भी बड़े, भगवान ने बोला ठीक है, आते ही भगवान ने ये नहीं बोला, भगवान ने ये बोला देखो तुम्हारी माता को तो आपने बदला लेना चाहते थे ना, वो तो पागल होकर मर जाएगी और तुम्हें 36,000 साल राज्य करना पड़ेगा। बोले ये नहीं चाहिए मुझे भक्तों का संग नहीं, वो भी मिलेगा, पहले ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत पश्चाताप कर रहे थे, मैंने क्या मांग लिया भगवान से। तो प्रभुपाद कहते हैं इससे मालूम चलता है कि भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, उसको बड़ा सावधान रहना चाहिए। भक्ति करते हुए हम जिस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, भगवान सारी इच्छाएं नोट करते हैं, भगवान कंप्लीट सारा रिकनसाइल कर देते हैं, उल्टी सीधी सब इच्छाओं को रिकनसाइल करके फाइनल प्रोडक्ट दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो शोक है वो आध्यात्मिक भी हो सकता है और भौतिक भी, निर्भर करता है उस शोक की अवस्था में हम किसकी शरण लेते हैं। अगर कृष्ण की, शास्त्रों की, हरि नाम की, भक्तों की शरण लेते हैं तो वो शोक हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल बनता है और वो बहुत मंगलकारी उसका प्रभाव होता है। अब इस संसार में हम शोक क्यों करते हैं, संसारिक वस्तु के लिए भी, और फिर कैसे वो आध्यात्मिक भक्त लोग भी शोक क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है शोक के पीछे? अतृप्त इच्छा, जो मैं चाहता हूं नहीं मिलना, यानी कि देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो लोभ है इसके पीछे। ज्यादा से ज्यादा चाहिए, वो नहीं मिलता तो हम शोक में चले जाते। जैसे एक व्यापारी था, बूढ़ा हो गया लेकिन उसकी लालच नहीं खत्म हो रही थी। तो उसके बेटे थे, बोले अब तो शांत हो जाओ पिताजी, बुढ़ापा आ गया, आप छोड़ो, हम संभाल लेंगे व्यापार, अब जाओ यहाँ से, है ना। यदि संस्कृति है कुछ समय के बाद व्यक्ति खुद ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो उसको बहुत अपमान सहना पड़ता है। बोले जाओ छोड़ो, अब इतनी आसक्ति, वो छोड़ ही नहीं रहे। तो उनके घर में एक बहुत बड़े भक्त आते हैं, तपस्वी सन्यासी आते हैं, बोले कुछ करो जी इनका। बोले ठीक है, मैं इनको अपने साथ घुमाता हूँ, भ्रमण करेंगे, जगह जगह जाएंगे तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा। तो ले आते, जगह जगह तीर्थ स्थान घुमाते हैं, तपस्या करवाते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति खत्म ही नहीं हो रही। इतनी आसक्ति धन से, इतना वो घुमाते घुमाते घुमाते, फिर एक बार वो शमशान घाट में ले जाते हैं। शमशान घाट में देखते हैं, ऐसे आज लोग ला रहे हैं, चिता जला रहे हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले अच्छा, अब हुआ फाइनल, कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया, बहुत अच्छी बात है। बोले क्या महसूस हो रहा है बताओ, क्या कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत, सारा जीवन बर्बाद कर दिया मैंने, मैं बिल्कुल ठीक है, कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, खत्म हो गया जीवन, सब कुछ खत्म हो गया, कितना बेकार हो गया। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? कह रहा पूरा जीवन कपड़े का बिजनेस करता, लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था। कितना बढ़िया बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है, लोग मरते ही रहेंगे। तो उसको शोक कह रहे हैं, उसको इतना लालच था कि मैंने क्या, मुनाफा कम हो गया। इसी ढंग से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्तों को भौतिकवादियों से सीखना चाहिए। हमेशा अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो भक्त क्यों शोक करता है? ज्यादा से ज्यादा, भक्त को भी लालच है क्या, ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, खूब सेवा करूं, खूब प्रचार करूं, खूब, कोई भी, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में नो स्टोन अनटर्न्ड, अपना पूरा भरसक प्रयास करूं गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए, तन से मन से, धन से मन वाणी शरीर से सब कुछ झोंक दूं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये लालच होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं ये जो शरीर है उस समय के लिए, कोई कारपेंटर या मिस्त्री बनने के लिए नहीं है, ये शरीर बनना है संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करने के लिए। ये शरीर घिस जाना चाहिए श्रवण और कीर्तन करते करते, श्रवण और कीर्तन, लोग कहते हैं ना धूप में बाल सफेद नहीं है, श्रवण और कीर्तन करते करते हम घिस जाए, ये लालच होना चाहिए, ये लोभ होना चाहिए। और यही कहते हैं रूप गोस्वामी जी, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रीड़े यदि कुतो भी लभ्यते। कृष्ण भक्ति करने की जो मति है ये कहीं से भी मिलती है तो खरीद लो। तो इसका मूल्य क्या है? लौल्यम अपि तत्रेक मूल्यम। उसका मूल्य क्या है? लौल्यम, इंटेंस ग्रीड, बहुत बड़ी गहरी लालच, है ना। कोटि जन सुकृति अपि न लभ्यते, कई कई करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी ये मति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी, क्या लाभ है, ये है इसका लौल्यम, इसका मूल्य है, बहुत बड़ी लालच, है ना। तो हम देखते हैं सब में बहुत लालच होती है। चैतन्य महाप्रभु अंत्य लीला में वर्णन आता है, राधा रानी के महाभाव में आंसू बहा रहे हैं और साथ साथ में ये बोल रहे हैं, धिक्कार है मुझे, मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है। तो ये आंसू क्या है? ये तो केवल दिखावटी आंसू है, असली प्रेम कहाँ है, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा। चार मुख्य इंस्ट्रक्शंस थी कि आप शास्त्रों का रचना करो, भगवान की लीला स्थलियों को स्थापित करो, विग्रहों को स्थापित करो, वैष्णव सदाचार को स्थापित करो। रूप गोस्वामी जी ने कितने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन फिर भी वो दुखी थे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, क्या अभी तक मैं अर्च विग्रहों की स्थापना नहीं कर पाया। तो बहुत दुखी होकर बैठे थे, तभी कृष्ण आते हैं ग्वाल बाल बन के और उनको फिर टीला पे ले जाते हैं, यहाँ गोविंद देव जी प्रकट होते हैं। तो रूप गोस्वामी जी सहकार में नहीं थे, कितने तो शास्त्र लिख दिए, कितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये भी हो जाए कभी, नहीं नहीं, वो कह रहे थे नहीं मैं ये नहीं कर पाया। इसी ढंग से शिला प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिखते हैं, अपने कन्वर्सेशन में शिष्यों को बोल रहे हैं, मेरे गुरु महाराज ने 1922 में मुझे आदेश दिया था, मैंने इतना समय ले लिया तो मेरे गुरु महाराज को लगा हुआ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं वृद्ध हो गया, इस योग्य हो ही नहीं उनकी इच्छा पूरी कर सकूँ। तो उन्होंने आप जैसे सुंदर अमेरिकन युवा युवतियों को भेजा ताकि उनका मिशन पूरा हो सके। तो वो शोक कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं कि मैं सेवा नहीं कर पाया। और शिला प्रभुपाद का क्या लालच था, एक बार शिला प्रभुपाद बैठे थे, गोविंद दास जी उनके सेक्रेटरी, प्रभुपाद ग्लोब घुमा रहे हैं सिर्फ, है ना। गोविंदा जी कह रहे प्रभुपाद क्या कर रहे हो, बोले यहाँ ब्रह्मानंद को भेजूंगा, यहाँ गर्गा मुनि को भेजूंगा, यहाँ उसको भेजूंगा, उसको भेजूंगा। उनके गुरु ने आदेश दिया खैर पाश्चात्य देश में जाओ, नहीं प्रभुपाद पूरे विश्व को कॉन्कर करना चाहते थे, हर जगह भेजूंगा। एक बार जब प्रभुपाद मुंबई में पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले आप बोल रहे हमने पूरे विश्व में छाए हुए हो, हम आपका मानेंगे जब आप पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद ने बोला मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। और उस समय ब्रह्मानंद जी फ्लोरिडा में प्रचार कर रहे थे, ब्रह्मानंद ने बोला तुरंत जाओ पाकिस्तान। प्रभुपाद मैंने अभी कॉलेज प्रोग्राम शुरू किया, कोई बात नहीं, सारा कॉलेज प्रोग्राम छोड़े गए पाकिस्तान में गए प्रचार शुरू किया। तो ये लालच था सारे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। प्रभुपाद का मेलबर्न में एक टीवी इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि स्वामी जी यू हैव सो मैनी टेम्पल्स सो मैनी डिवोटीज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। प्रभुपाद बोला आई डोंट थिंक आई एम सक्सेसफुल। अरे व्हाई सो मैनी डिवोटीज आर देयर। प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद बोला मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब पृथ्वी पे एक एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा होगा। ये लालच इससे संतुष्ट नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले मैं परम पूज्य जयप्रदा का स्वामी महाराज का कोट पढ़ा। परम पूज्य जयप्रदा का स्वामी महाराज कह रहे हैं मुझे बहुत बीमारियां हैं, मेरी सबसे बीमारी बड़ी बीमारी क्या है कि जब कोई नया व्यक्ति मेरे पास आता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता उसको कृष्णा कॉन्शियस देने के लिए, ये मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए इस अवस्था में भी वो इतना भ्रमण कर रहे हैं, कोई सोच में नहीं सकता। ये लालच है, क्या लालच है, सेवा करने का लालच है ना। तो ये लालच होना चाहिए। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्ति असीमित है और भगवान की सेवा असीमित है और भक्त सोचता है मैं बहुत सीमित हूं तो हमेशा शोक में रहता है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, असीमित स्कोप है लेकिन मैं कितना करूं, थोड़ा सा ही कर पा रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा है। तो भक्ति हमेशा ये लालच है, लालच भी बनी रहेगी हमेशा। और कभी भक्त अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं होगा, चलो जी बहुत सेवा हो गई अब रिटायरमेंट लेते हैं। नहीं, भक्तियों के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है, वो चाहते मैं और ज्यादा से ज्यादा सेवा करता रहूं। ऐसा भी ना कोई वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि तीन प्रकार की चीजें जिसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्या है, जैसा जीवन साथी मिला पति पत्नी मिला उसमें संतुष्ट रहो, जैसा प्रसाद मिल जाए खाने को उसमें संतुष्ट रहो, और जितनी आय आती है उसमें संतुष्ट रहो। और तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वो क्या, सेवा करने में और जप करने में और तीसरा दान देने में। तो आजकल के लोगों का बिल्कुल उल्टा एटीट्यूड सेवा बहुत हो गई बस इतनी ज्यादा नहीं, और दान दे तो दिया पांडव बन तो गए और कितना बनाए और जब 16 माला मैक्सिमम सो नहीं, और फिर उन बहुत ही चीजों के लिए हम शोक करते हैं। तो जो भक्त है वो हमेशा उत्साहित रहता है, वो लोभ भर जाता है उसके अंदर कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा को बढ़ाऊं। तो एक साधक कैसे अपने जीवन में इस लोभ को इस आसक्ति को बढ़ा सकता है ना, कैसे, आप में से कितने लोग चाहेंगे कि ये लोभ हमारे जीवन में आए कि हम खूब लोभी हो जाए सेवा के लिए, है ना। और जब सेवा करनी हो तो हमेशा रे नहीं और करनी थी, कम कर पाया, ज़्यादा करनी चाहिए थी, केवल 2.5 लाख किताबें नहीं 10 लाख बांटनी चाहिए, है ना, कम है, इतने लोग दुखी हैं भाई और बांटनी किताबें और प्रसन्न करना है। अभी हम करुणाचरण प्रभु हम एक जगह गए थे करोलबाग में, एक ज्वेलर थे वो गोड़िया मठ से दीक्षित हैं वैसे, लेकिन हमेशा हमें हर साल सपोर्ट करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं और अपना महीने में ज़्यादा टाइम वो वृंदावन में भी रहते हैं, हफ्ता मुश्किल से आते हैं दिल्ली में। तो वो नहीं थे दुकान पे, तो उनके बेटों ने उनकी बेटी ने गीता तो कर दिया चेक दे दिया हमें, तो हमने फ़ोन पे उनसे बात की, तो मुझे फ़ोन पे बोलने लगे कि मैं व्रज में हूँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बहुत विनम्रता से बोल रहे थे। वो क्या आशीर्वाद मांग रहे थे, कहते हैं मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसी सेवा करूँ कि अपने गुरु परंपरा को और षट गोस्वामियों को अपना मुख दिखा सकूँ, है ना। तो बड़ा अच्छा भाव लगा कि दिखावे कि नहीं, बड़े हृदय से बोल रहे थे कि मैं ऐसी सेवा करूँ कि अपने गुरु को मुंह दिखा सकूँ अपने, है ना। तो ये सीखना हमें बहुत अच्छा लगा कि यस हमें भी ऐसी सेवा करनी चाहिए कि हम प्रभुपाद को अपना मुंह दिखा सकें, रोज आके हमें प्रभुपाद से दिखाना चाहिए आज मैंने कुछ ऐसा किया कि प्रभुपाद के सामने मैं आ सकता हूँ, है ना। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं तीन प्रकार की विज्ञप्तियाँ होती हैं, प्रार्थनाएँ होती हैं, संप्राथमिका ध्यान बौद्धिका और लालसामय। संप्राथमिका आत्मा में भक्त यही प्रार्थना करता है कि मेरे आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाए, मेरी जो भक्ति है हृदय में एक स्पॉन्टेनियस स्वतः ही हो जाए। कैसे स्वतः हो जाए? जैसे स्वतः ही एक युवक का युवती के प्रति, एक युवती का युवक के प्रति होता है, वैसे पद्यावली में रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, भक्ति संबंध सिंधु में भी ऐसा मेरा आकर्षण हो जाए। और फिर दयानंद बोधिका में लिखते हैं कि पद्म पुराण की प्रार्थना है कि एक भक्त जब भगवान के सामने आता है तो संकोच कर रहा है, मैं कैसे आपके सामने आऊं, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अपराधी, रोज वही पाप वही अपराध करके फिर आपके सामने आ जाता हूं। ऐसा नहीं कि सामने नहीं आना, चुपचाप बैठे रहे, सामने आना है, लेकिन ये भाव। तो वो कह रहे थे मैं क्या ऐसा करता हूँ कि मैं अपने गुरु को मुंह दिखा सकूँ। तो हम भी प्रतिदिन जब आए प्रभुपाद के सामने उनसे प्रार्थना करें और ऐसा करके आए, हाँ प्रभुपाद आज मैंने ये किया, हालांकि ये पर्याप्त नहीं, मैं और करना चाहता हूँ, कुछ तो हो कि मैं कुछ कह सकूँ। तो ये हम भी सेवा में अपनी आसक्ति या भगवान के प्रति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये लौल्यम है, ये लोभ है, इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। साधना भक्ति का मतलब है प्रैक्टिस। तो उसका कैसे हो सकता है? तो जैसे कि बताया गया है भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, शुशुषो शद धानस्य वासुदेव कथा रचि स्याद मह सेद विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, कि जब ऐसे भक्तों का हम संग करें, उनकी सेवा करें, जिनकी श्रवण कीर्तन में रुचि है, जो लोभ है वो हमारे अंदर भी आएगा। तो ऐसे भक्त जो हमसे उन्नत है, जिनको जप करने में लोभ है, सेवा करने का लोभ है, तो हम उनकी सेवा करें और उनकी सेवा से, उनकी कृपा से हमारे अंदर भी लोभ विकसित होता है, नंबर एक। नंबर दो, खूब प्रार्थनाएं करें, अपने हृदय को प्रकट करें। प्रार्थनाएं हम पूर्ववर्ती आचार्यों के भी दोहरा सकते हैं और अपने हृदय को भी भगवान के सामने, राधा राधिकरण जी के सामने प्रकट करें। इसमें पूरी भगवान, तो जैसे हमने बताया कृष्ण के साथ संबंध सनातन है, कृष्ण की तरफ से रिश्ता ऑन है, हमारी तरफ से स्विच ऑफ है। तो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी स्थिति को प्रत्यक्ष बताते हैं और लाल और कृपा की याचना करते हैं, तो हमारे एक आसक्ति होती है, कृष्ण बढ़ती है। तीसरा, हम जो भी भक्ति के अंग का पालन करते हैं उसको आसक्ति से करने का प्रयास करें। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं साधना भक्ति दो प्रकार की है, आसंग साधना और अनासंग साधना। साधना भक्ति करके क्या बनते हैं भक्ति, कौन कौन सी तीन स्टेजेस बताई हैं? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति स्वयं भाव भक्ति नहीं बन जाएगी 15-20 साल के बाद, जी गवर्नमेंट सर्विस है प्रमोट हो गए। साधना भक्ति में से भाव भक्ति में आने के लिए जो साधना भक्ति के 64 अंग हैं उसको हमें आसक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि स्वयं राधा कृष्ण वहां उपस्थित हैं, हम लोग जप करते हैं, लेकिन जप को आसक्ति के साथ करना चाहिए, हृदय से पुकार के। प्रभुपाद क्या कहते हैं, जपा मीन्स स्पीकिंग फ्रॉम माउथ, हियरिंग फ्रॉम ईयर्स एंड क्राइंग फ्रॉम हार्ट। हृदय से रो रो कर भगवान को पुकारना, तो इसमें इमोशंस हैं, स्पिरिचुअल इमोशंस हैं, तो आसक्ति है, तो फिर हमारा और जप करने का मन करेगा, और बढ़ना है, और भगवान से संबंध करना है। जपा एक तरह का एक डिवाइन कम्युनिकेशन है राधा कृष्ण के साथ, अपना हृदय प्रकट करें, मुझे आपका शरण चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपकी रक्षा चाहिए, तो ये है, तो संबंध होगा, लालच बढ़ेगा, क्योंकि भगवान, हम एक कदम उठाते हैं भगवान 10 कदम उठाते हैं, तो भगवान अपने रेसिप्रोकेट जब करते हैं तो और लालच बढ़ेगा हमारा, और लालच बढ़ेगा। तो भक्ति का जो भी अंग है, हम सुबह मंगल आरती गुरु अष्टकम गाते हैं आसक्ति के सामने। कई बार ऐसा होता है हम इतने एब्सेंट माइंडेड होते हैं, कहीं मेरे पता भी नहीं चलता आरती ली है नहीं ली है। सुबह उठ जाएंगे, स्थूल शरीर यहाँ होगा, सूक्ष्म शरीर कहीं और घूम रहा होगा, तो माइंडलेस कोई आ सकती नहीं। तो फिर क्या होता है, ये चीजें रिचुअल लगती है, फिर इसको करने में लालच नहीं रहेगी, निपटाएंगे इसको, जब को भी निपटाएंगे, चलो ये मंगल आरती भी निपटा ली, ये भी निपट गए, ये भी निपट गए, नहीं। पुजारी है डीटी वर्शिप करने, वो आसक्ति से, डीटी वर्शिप सबसे अच्छा तरीका आसक्ति बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं बाकी सब थ्योरी है, डीटी वर्शिप प्रैक्टिकल, जो डीटी वर्शिप करते हैं आप देखेंगे उस पुजारी का भगवान से आसक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, उसकी आसक्ति बढ़ती है, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं आसक्ति बढ़ेगी। और भी अंग है, तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी में जल डाल रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो मन को भी लगाने का प्रयास करें। ये पूरी साधना भक्ति किस लिए है, ये इनके इन प्रकार मन कृष्ण निवासी है, मन को लगाना है। जब मन को लगाएंगे फिर अटैचमेंट बढ़ेगा और फिर लालच बढ़ेगी और फिर हम नहीं कर पा रहे तो और इच्छा होगी करने की। तो पहला क्या बताया था, भक्तों की सेवा, दूसरा प्रार्थना अपने हृदय को एक्सप्रेस करना, तीसरा जो हम हाँ जो साधना भक्ति को करें पूर्ण आसक्ति के साथ करें, तभी हम बहुत जल्दी हम, क्योंकि भगवान तो चाहते हम तुरंत प्रेमा भक्ति के स्तर पे आए। तो अगर हम कुछ अच्छा प्रयास करेंगे, तो ये कुछ विचार थे इस श्लोक से कि वसुदेव खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये खेद भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और हमारे जीवन में बहुत खेद में परिस्थितियां आती हैं, शोक में परिस्थितियां आती हैं, और ये स्वाभाविक है शोक में जाना, लेकिन उस शोक की अवस्था में करते क्या है। अगर हम भगवान के नाम की, भक्तों की, गुरु की, शास्त्रों की शरण लेते हैं, तो ये सब बहुत मंगलकारी हो जाता है। और कैसे हम जो भक्त है हमेशा सोचते हैं कि उनका सेवा का लालच बढ़ा रहे, वो हमेशा इस भक्ति में उसकी एक शोक की अवस्था भी बनी रहती है साथ साथ, हालांकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, लेकिन भक्त हमेशा कांक्षती भी करता है और सोच भी करता है कि नहीं और बढ़ना है और बढ़ना है। भगवान ने अर्जुन को डांटा अशोचान अशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासुन गतासुन नानुशोचंती पंडिता, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, यानी कि उनके लिए शोक कर सकते हो जो शोक करने योग्य हैं। शोक करने योग्य क्या है कि मैं कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ाऊं, कम है ज्यादा बढ़ाऊं, सेवा कम कराऊं और सेवा कर सकता हूं और बढ़ा दी। तो हम उसकी चर्चा की, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तीन तरीके हमने लास्ट में चर्चा की। हरे कृष्ण। यस बोलिए। उसने बोला ना भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में तुम्हें अगला जन्म मेरी कोख से मिलेगा। तो सुनीति ने यही अच्छी बात पकड़ी कि भगवान की शरण में जाने को कह रही है, बस चले गए। नहीं नहीं, अगला जन्म भी मेरी कोख से तब मिलेगा जब तुमने भगवान की शरण ली होगी, ये सौभाग्य तब मिलेगा तुम्हें। ऐसे थोड़ी मेरी कोख से मेरा घर में जन्म मिलना इतना आसान थोड़ी है। पहले भगवान की शरण में जाओ, ये वरदान मिलेगा मेरे गर्भ से पैदा हो गए फिर तुम बैठ पाओगे। तो ने ये बात ले ली कि भगवान की शरण में जाना है।
तो मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत एनालिटिकली आप हर टॉपिक को समझाते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये था, वो जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन ने गीता सुनी युद्ध के प्रारंभ होते हुए, और फिर जब अभिमन्यु का मृत्यु होता है तो अर्जुन फिर शोक में आ जाते हैं, तो उस वो शोक जो है वो उसको आध्यात्मिक मानना चाहिए भौतिक मानना चाहिए। फिर वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक जयद्रथ को मैं सूर्यास्त से पहले मारूंगा नहीं, तब तक मैं जो है वो मैं अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो सो कॉल्ड कोई भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं या फिर वो युद्ध का लेते हैं। तो कैसे अर्जुन के इस एक्शन को हम समझें और हम अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी देखते हैं, हम लोग हालांकि ये ज्ञान समझते हैं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे जीवन परिस्थिति आ जाती है कि हम बहुत उदास हो जाते हैं या शोक में आ जाते हैं, तो लगता है कि नहीं उसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। आश्रय तो हम ले ही रहे होते हैं, एक तरीके से जप कर रहे होते हैं, तो कैसे हम स्थिति को समझें और अपने व्यवहारिक जीवन में इससे कुछ शिक्षा ले सके।
थैंक यू, वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है आपका। और ये मैंने कई बार पूछा भी था, शिवराम स्वामी महाराज आए थे स्टफ क्लास में काफी साल पहले, ये प्रश्न पूछा था उनसे। तो महाराज बता रहे थे, देखो हमें ये पहले मानना चाहिए कि भक्तों के जीवन में भी इमोशंस हैं, भक्त कोई कठोर हृदय का नहीं हो जाता है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब उसका बेटा मारा गया, बेटा मारा गया तो उनको शोक होगा ही होगा, ये संभव नहीं है कि ठीक है जी कुछ भी हो गया ना जाए ते मेरे तेवा कदाचित नहीं, जिनके साथ हम रह रहे हैं वो होगा ही होगा। और फिर अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव का है, और क्षत्रिय स्वभाव का है, ये क्रोध आया तो उसने बोला ज्यादा का वध जरूर करूंगा, लेकिन भगवान की शरण कभी नहीं छोड़ी उसने, भगवान की शरण में था तो इसलिए फिर भगवान ने पूरी उसकी सहायता भी की। तो किसी भी परिस्थिति में भगवान की शरण नहीं छोड़नी, और जो हमारी प्रकृति है उसके हिसाब से हमारा व्यवहार होगा ही होगा, ऐसा है। लेकिन इसके लिए कि उसके शोक में बहकर वो आगे चलता गया, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के जब भाई का वध हुआ तो उनको भी एक शोक का उल्टा अति रोष हो गया उनके अंदर, और वो यक्षों का वध करने लगे और अपने आप को रोक ही नहीं पाए, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति की हुई है तो इससे भगवान भी रक्षा करते हैं, भगवान भी कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, स्वयं वो मनु आए उन्होंने उनको रोका किया। तो अगर भक्त ऐसी अवस्था में आके कई बार लिमिट क्रॉस भी कर रहा होता है और उसने सही भक्ति का पालन किया हुआ है तो भक्त भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं किसी किसी से। और हमें भक्त का भी ये प्रयोजन होना चाहिए कि किसी भी अवस्था में ऐसे इमोशंस जो ऐसे टर्मोइल होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी, स्वाभाविक है हमारा विचलित होना, लेकिन उस विचलित अवस्था में भी हम भगवान की शरण को ना छोड़े, हरि नाम को ना छोड़े।
धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी के प्रश्न से ही संदर्भित मेरा भी एक प्रश्न है, थोड़ा सा आगे उसका। जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार करते हैं अपने प्रियजन के प्रति जो हमारे हृदय को कष्ट देता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और हम अपने उन भावनाओं को कैसे वश में कर सकें, क्योंकि हम इतने साल से जैसे हम यहाँ पर बैठ के भागवतम सुन रहे हैं, शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे परिस्थिति आती है तो एक स्वाभाविक रूप से हमारे लिए परीक्षा की घड़ी होती है कि हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए। यदि उसने मुझे खोटा सिक्का दिया है तो क्या मैं उसके ही खोटा सिक्के को वापस करूं, या मेरे पास अपने अलग करेंसी है जो मैं उसको दे सकता हूं?
आपका प्रश्न है कि किसी भक्त ने हमारे साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया?
नहीं, मैं भक्त की बात नहीं कह रहा हूं, रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे जब हम एक सामान्य गृहस्थ जीवन में जब जी रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में है, तो कभी इस तरह की परिस्थिति आती है कि कुछ ऐसे वाद विवाद हो गए या किसी के संग कुछ अलग तरह की परिस्थिति हुए और वो दुर्व्यवहार किया हमसे या हमारे किसी भी संबंधी से?
तो जैसे हमने बताया, ऐसी सिचुएशंस आना बहुत नॉर्मल है ना, गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में, जब तक इस संसार में है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आश्रम में ये परिस्थितियाँ आती रहेंगी, कोई ना कोई हमें सताता ही रहेगा, हम भी अपने मन से ही परेशान होते ही रहेंगे। तो हर परिस्थिति में जैसे ये करना है, ये हमने चर्चा की, जो मटेरियल इमोशंस हैं इसको हम स्पिरिचुअल बना सकते हैं, कि हर परिस्थिति में हम ये प्रयास करें भगवान की शरण लें, और तीव्रता से लें कि हरि नाम से प्रार्थना करें कि इस परिस्थिति में भी मैं आपको खोऊं ना, आपकी शरण में रहूं, और डेस्परेट होकर लो शरण। जैसे ध्रुव महाराज ने बहुत डेस्परेटली, बहुत तीव्रता से भक्ति की, बहुत डिस्टर्ब थे ध्रुव महाराज सुरुचि के तीखे शब्दों से, लेकिन बहुत डेस्परेटली उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ शरण ली भगवान की। तो उसी जगह उस समय एक अच्छा काउंसलर चाहिए हमें, है ना, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, ध्रुव महाराज की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उस समय हमें सही गाइडेंस मिल जाए कि नहीं इस समय आप ज़्यादा तीव्रता से भगवान की शरण लो, तो फिर अन्यथा हम भी रजोगुण तमोगुण के भाव में बह सकते हैं, खोटा सिक्का खोटा वापस देंगे, तो उसमें क्या है, नेगेटिव ब्रीड्स नेगेटिविटी होता ही रहेगा, उससे इतना लाभ नहीं होगा। तो हमने जो सुना है वो सुना, जैसे ना जैसे वो श्लोक था, शोचा नश्यति श्रुतम, जो सुना है पढ़ा है वो भी नाश कर देता है शोक में चले गए तो, लेकिन उस समय कोई हमें अच्छे गाइड मिल जाए या हम अपने आप को संभाल के कर लें तो वही, इट मे नॉट बी सो इजी बट इफ वी टेक हेल्प फ्रॉम अ राइट पर्सन।
जब हम ऐसे किसी वरिष्ठ भक्त का मार्गदर्शन उस परिस्थिति में स्वीकार करते हैं तो क्या वो भगवान के शरणागति ही कहलाती है?
डिपेंड करता है वो क्या दे रहे हैं मार्गदर्शन।
हाँ, निश्चित रूप से मार्गदर्शन उसी से हम चाहेंगे, जिस पर हमारा विश्वास हो,
बिल्कुल,
जिस पर हमारी श्रद्धा हो,
निश्चित रूप से। और हम देखा भी होगा अपने प्रैक्टिकल अनुभव से, और आपने भी ऐसा ही गाइड किया होगा।
प्रभुजी, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रति शरणागत है, हर परिस्थिति में भगवान की शरण ले रहा है, उसका अपने परिवार जनों के साथ या अपने संबंधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहेगा?
बहुत अफेक्शनेट रहे। प्रभुपाद भगवद गीता के 13वें अध्याय में लिख रहे हैं, पुत्र दार ग्रह अनादि, उसमें जब उसकी बात आ रही है वैराग्य की, तो उस बोल रहे हैं कि अपने सारे फैमिली वालों से, सगे संबंधियों के साथ बहुत अफेक्शनेट व्यवहार करेगा, लेकिन अटैच नहीं होगा, बहुत प्रेम में व्यवहार होना चाहिए।
मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में नहीं भी है और अगर इस तरह से पश्चाताप कर रहा है, जैसे वसुदेव कर रहे हैं, किसी भी वैसी परिस्थिति को फेस कर रहा है, तो क्या ये गलत है उसका ऐसा पश्चाताप करना?
गलत है, लेकिन कोई मंगलकारी नहीं है, कोई शुभ नहीं होगा, शोक करने से कुछ होगा नहीं, परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है, लेकिन उसी परिस्थिति को बहुत सुंदर अवसर बना सकते हैं वो भगवान की शरण लेने। तो
जैसे आपने वो तीन ऑप्शंस बताए कि जो ले सकते हैं अगर कोई शोक में होता है, कुछ लोग होते हैं वो कोई पॉलिटिक्स करेंगे, कोई गलत चीज करेंगे, दूसरा है कि वो इग्नोरेंस में चले जाएगा, तीसरा है कि भगवान की शरण लेगा। तो इसी में जाके कि कोई शोक है तो भगवान की शरण लेते हैं, कोई ऐसा सेवा में कोई दिक्कत आया या कोई इसी संबंध में दिक्कत आया और भगवान की शरण लें, उसमें भी कहीं हम भगवान की शरण लेंगे, ठीक है यही करूंगा मैं और अपना प्रयास कुछ नहीं करूंगा इस तरह से कि मैं कि उसको ठीक करने के लिए, सेवा को ठीक करने के लिए, या सेवा को छोड़ दिया या संबंध को छोड़ दिया, मैं शरण लूंगा भगवान की, हरि नाम लूंगा खाली, मैं रीडिंग करूंगा खाली, या मैं खाली वृंदावन जाके रहूंगा ऐसे।
तो भगवान की शरण मतलब भगवान, भगवान के भक्तों, भगवान का प्रोसेस, सारी शरण, ये फिर वही इग्नोरेंस है, ये फ्रस्ट्रेशन है, व्यक्ति भक्तों के संग में दुखी हो गया, चलो मैं और केवल भगवान और कोई नहीं, वो कंप्लीट शरण नहीं है, वो अज्ञानता में ही है, मतलब इसी प्रोसेस में और तीव्रता बढ़ानी है। तो वो डिटेल की बात है, किसी पर्टिकुलर संबंध में आ रहे हैं दिक्कत तो कैसे उस संबंध में डील करना है, या सेवा में सही नहीं रिजल्ट मिल रहा, उसको सेवा को कैसे आगे अच्छा बढ़ाना है, तो वो तो प्रयास साथ साथ में रखेगा ही रखेगा, नहीं तो वो फिर मिक्सचर हो गया तमोगुण का, ठीक है जो मैं कुछ नहीं करूंगा, जब बढ़ा दूंगा, ठीक है जब बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में स्किल्स को भी देखना पड़ेगा, कहाँ पे कमी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे मैं आगे कर सकता हूँ, वो प्रयास भी जारी रखेगा, है ना। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यतन आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम, केवल आग्रह करने से काम नहीं चलेगा, यतन भी करना पड़ेगा, और केवल यतन से काम नहीं चलेगा, आग्रह भी करना पड़ेगा, तो यतन और आग्रह दोनों हमेशा चलते रहे तो फिर रिजल्ट सही आएगा। दामोदर लीला भी है, प्रयास और कृपा, यस।
थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी जैसे आपने लोभ बढ़ाने के आपने बताया कि किस प्रकार से हम सेवा में और कार्यों में लोभ बढ़ा सकते हैं, आपने तीन तरीके बताए, जैसे कि पहला कि जिन भक्तों का मतलब लोभ है हरि नाम लेने में, हरि कथा में, उनका संग करके, दूसरा प्रार्थना है, और तीसरा आसक्ति के साथ करके। प्रभु जैसे अब देखते हैं कि जो पहला आपने जो बताया कि तो प्रभु जी अगर मेरा नहीं है, लोभ नहीं है या मैं नहीं चाहता, तो माइंड उस समय ऐसा ऑप्शन लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं होता कि वो ऐसे भक्तों को के पास जाए और उनका संग करे, और दूसरा फिर ऐसे भक्तों को पहचान पाना बड़ा कठिन होता है उस व्यक्ति के लिए जिसका खुद का ही लोभ नहीं है, तो वो द्वंद में पड़ा रहता है कि क्या करे क्या करे वो, और ऐसे भक्तों का फिर संग मिलना भी थोड़ा दुर्लभ होता है, मतलब कि मतलब पता करना ही और फिर मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। और दूसरा आपने बताया कि जैसे आसक्ति के साथ कर रहे हैं इसको, मतलब जो थर्ड वाला, तो प्रभु जी आसक्ति क्योंकि माइंड हमेशा ही इतना एजिटेटेड रहता है, इतना वो रहता है, तो उस मन को आसक्ति के साथ लगाना उस प्रोसेस में अपने आप में कठिन कार्य है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे इसको कर पाए थोड़ा बताइए।
प्रैक्टिकली एक ही तरीका है प्रभु जी, जो भक्ति के नियमों का पालन करते रहो। भगवान गीता के 12वें अध्याय में ये बताते हैं कि आपकी स्वाभाविक इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की, तो भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करते रहो। तो अभी मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो डर से, अथॉरिटी से, कुछ भी है करते रहो, तो जब हम निश्चित नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तो श्रवण में इतनी शक्ति है, भक्ति उत्पादिते पुंसा शोक मोह भयापहा, तो अपने आप ये सब प्रकट होगा। ठीक है, तो अभी हमारा स्वतः नहीं हो रहा, तो ये तो प्रार्थना कर ही सकते, इतना सुनते हैं, इतना आकर्षण है भक्तों का भगवान के प्रति, मेरा नहीं है तो प्रार्थना कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कुछ तो सिंसियरिटी है हमारे अंदर, तभी हम यहाँ बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, तो भगवान उस सिंसियरिटी को देखते हैं, फिर हम श्रवण लगातार कर रहे हैं, तो श्रवण से धीरे 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 हरि नाम भी ले रहे हैं, जैसा भी ले रहे हैं, कुछ कभी कभी तो कुछ ले लेते हैं ठीक हरि नाम कृपा से, तो उसका प्रभाव पड़ता है। भक्ति में बहुत शक्ति है, थोड़ी सी भी प्रगति बहुत आगे हमें ले जाती है, तो इसलिए इस प्रोसेस में लगे रहें। एंड व्हेन वी हियर, उस पर थोड़ा मनन करते हैं, उसके लिए फिर इच्छा करेंगे तो विकसित होती है।
पहले वाला बताया भक्तों की सेवा करें, उसको कैसे
आएगा फिर, जब ऐसा हम सुनते रहेंगे भक्तों की सेवा का महत्व मालूम चलेगा, तो फिर वो हृदय से इच्छा भी होगी मैं करूं सेवा। तो श्रवण ही एकमात्र तरीका है, भक्तों का संग में रहें, श्रवण करते रहें, सारे नियमों का सख्ती से पालन करते रहें, सो कृष्णा विल टेक केयर।
भक्तों की सेवा को थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे, क्या मतलब भक्तों की सेवा, ऐसे भक्त की सेवा करें जिनकी रुचि है तो
भक्तों की सेवा, ये है सबसे अच्छी भक्तों की सेवा, ये है कि उनके चिंताओं को कम करना, उनके मिशन में उनका सहयोग देना। प्रभुपाल इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरी चिंता कम हो रही है। तो मिशन, भक्तों का मिशन एक ही है कि भक्ति खूब प्रचार करें, बढ़ाएं, सबको जोड़ें, सबको आगे बढ़ाएं, तो इस मिशन में हम सहयोग दें। ये इनके इन प्रकार इन किसी भी तरीके से हम किसी भी भक्त की एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, बहुत बड़ी सेवा।
थैंक यू सो मच।
ठीक है, आई थिंक मिस दो बजे।
थैंक यू प्रभुजी। प्रभुजी आपने प्रवचन के शुरुआत में बताया था कि अगर कोई इस प्रसंग को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये नॉर्मल शोक प्रकट हो रहा है, बट ये भगवान के संदर्भ में है इसलिए ये दिव्य है। परंतु प्रभु जी हम ये भी समझते हैं कि ये भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो ब्रजवासी हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके लिए वो उनकी संतान है, उनके मित्र हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इसको कैसे समझें कि क्योंकि हम क्योंकि वो भगवान है इसलिए दिव्य हो गया है, बट उस व्यक्ति के लिए, यहाँ पे तो हम रागात्मक भक्त की बात कर रहे हैं, परंतु बाकी जो ब्रजवासी भी हैं जो रागात्मक भक्त नहीं है, जो कि जीवात्माएं हैं बाकी, तो उसको कैसे समझे कि उनके लिए तो क्योंकि वो एक संबंध है जिसको शोक मना रहे हैं।
हाँ तो ठीक है, यही तो खूबी है, वो कृष्ण को अपना बेटा मान रहे हैं, अपना दोस्त मान रहे हैं, अपना प्रेमी मान रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो इस परिस्थिति में कि कृष्ण के बेटे हैं, उनके मित्र हैं, ये कोई साधारण नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत पहले की भक्ति है, पुण्य किए तब इनको ये सौभाग्य मिला, कि वो भगवत ज्ञान भी नहीं है उनको, ये भगवान है, नहीं बस प्रेम है, तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, और ये हर किसी को ये ऊंची स्थिति नहीं मिलेगी। तो बहुत से उनके सुकृतियां आध्यात्मिक पुण्य इकट्ठे हुए हैं तब इनको ये प्राप्त हुआ है।
बट प्रभु जी ये तो शोक दिव्य बन गया है, बट शोक दिव्य था, मतलब अगर आप उस मतलब हम शास्त्र की दृष्टि से ना देख के इसको ऐसे समझे,
तो बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं इसमें, भगवत ज्ञान बिल्कुल शून्य है कि ये भगवान है, मेरा बेटा है, यशोदा मैया चिंता कर रही है भगवान के विषय में, बस देख जैसे कि नॉर्मल माँ अपने बेटे के लिए चिंता करती है, लेकिन बेटा साधारण नहीं है ना। और यशोदा जी इस परिस्थिति में क्यों आई, बड़ी विशेष स्थिति है, हर किसी की स्थिति नहीं हो सकती, तो हम खाली एंड रिजल्ट देख रहे हैं, पीछे का होमवर्क नहीं देख रहे।
थैंक यू प्रोजी, बहुत ही अच्छा क्लास था। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने अर्जुन के शोक को स्पिरिचुअल बताया था एक और लेक्चर में, और स्पिरिचुअल शोक को आपने ये बताया था कि प्रेम कम है, सेवा में को बढ़ानी चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी जी का आपने गोविंद देव जी के लिए बताया, तो मैं अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उनका शोक तो भौतिक ही लग रहा है, रूप गोस्वामी जी का तो आध्यात्मिक लग रहा है, उसमें क्लियर है, तो ये थोड़ा सा
अर्जुन का भौतिक सर पे है, लेकिन अर्जुन ने किया क्या, फिर कृष्ण की शरण ले ली और भगवान ने उसको डांटा भी, जिसके लिए शोक करे वो शोक करने योग्य नहीं है, बट अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली इसलिए वो आध्यात्मिक बन गया।
तो मतलब अगर हम अपने भौतिक इमोशंस या शोक को भी भगवान की शरण लेने में यूज करते हैं तो वो फिर आध्यात्मिक माना जाएगा,
उसको फिर हम उसमें भक्ति में तीव्रता बढ़ाते हैं, हरिनाम में तीव्रता बढ़ाते हैं तो आध्यात्मिक हो और उसका रिजल्ट मंगलमय होगा।
थैंक यू।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की निताय गौर प्रेमानंद।